ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 6। ये पद है, मैं इसे सिर्फ पढ़ देता हूँ, काफी लंबा है। जरहि वाव व राजंस राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवता नारदस्य चरण उपसेव्या अंधसा अवगता परम अर्थ स तत्वता ब्रह्म सत्रेण दीक्षी से मान अवनी तल प्रीपालनाय आमनाथ प्रचर गुणगण एकांत भाजनत्य स्व पित्रा उपमंत्रिता भगवती वासुदेवे एम व्यवधान समाधि योगेन समाविष्टा सकल कारक क्रियकलाप न एव अभ्यनंदना यद्यपि तत् अप्रत्यमानव्यम् तत् अधिकरणे आत्मना अन्य समात सता अपि प्राभवम् अन्य वीक्षमानम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ जरहि, चूंकि वावह निस्संदेह राजन, हे राजन, स वह राजपुत्र राजकुमार प्रियव्रत प्रियव्रत परम महान महाभागवत भक्त नारदस्य नारद के चरण चरण कमल की उपसेव्या सेवा से अंजसा शीघ्र अवगत परिचित हो गया परमार्थ दिव्य विषय सतत्वता समस्त गहे तथ्यों सहित ब्रह्म सत्रेण ब्रह्म की निरंतर चर्चा से। हिंदी अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी और नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा अनुल्लंघ्य होने पर भी राजकुमार प्रियव्रत ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में ये प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से पराय मुक्त तो नहीं हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, श्रद्ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। विशुद्ध वैष्णव या गुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना भव सागर से निस्तार नहीं है। राजकुमार प्रियव्रत नारद के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे और इस प्रकार उन्हें दिव्य तत्वों का सही ज्ञान हो गया था। सतत्वता का अर्थ है प्रियव्रत को आत्मा भगवान तथा आत्मा एवं भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान था। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से इसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। अतः राजकुमार ने ईश्वर की भक्ति में अपने को लगाए रखने का निश्चय किया। जब प्रियव्रत के पिता स्वयं भू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने के दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। हरे कृष्णा। यह महान मुक्त भक्त का लक्षण है, संसारिक व्यापारों में लीन होते हुए भी वह उनमें रुचि नहीं दिखाता, वरना भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए भी वह संसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। उदाहरणार्थ बच्चों के प्रति आकर्षण ना होते हुए भी वह उनकी चिंता करता है और उन्हें भक्त बनने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से प्रिय वचन बोलता है किंतु वह उससे आसक्त नहीं रहता। भक्ति भक्त के भक्त भक्ति के द्वारा परमात्मा के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के एक से एक परम सुंदरी 16,000 पत्नियाँ थीं और वे प्रत्येक से प्रिय पति की तरह आचरण करते थे, किंतु वे किसी के प्रति आकृष्ट या आसक्त नहीं हुए। इसी प्रकार भक्त भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों से अत्यंत प्यार जताता रहे, किंतु वह इन कार्यों से कभी आसक्त नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है। वेदों में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी को भगवान तथा गुरु में अविचल श्रद्धा हो तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार सर्वथा प्राप्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23। भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करते हुए उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तुरंत ही ईश्वर की समस्त लीलाओं का स्मरण हो आता है। चूँकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है, अतः वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुला पाता। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है। इसे ब्रह्म सत्र अथवा सदैव भगवान का चिंतन कहते हैं। श्री नारद ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतया दीक्षित कर दिया था। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओम अज्ञान त्रिविंदस्य ज्ञानांजन शाखा चक्षु मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं कृपाकदमयं ददाति सर्वदा। नमो विष्णुपदाय विष्णुवशाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनीते। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि भाषाधरे वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयं च पतितानां पावने व्यो वैष्णवो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जगद्गुरु श्रील प्रभाद की। इस श्लोक के अनुवाद में बताया गया कि नारद मुनि इसे गुरु के मार्ग निर्देशन में चलते हुए राजकुमार प्रियव्रत ने अपने जीवन की समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसे फिर संसार में घुसने के लिए बात की जा रही उसके पिता द्वारा स्वयंभू मनु द्वारा। और ये कल भी चर्चा हुआ था जिस श्लोक इससे पहले, और आज यहाँ पर इस श्लोक की जो विशेष बात इसमें बताई गई, प्रभुपाद जी जो अपने तात्पर्य में निष्कर्ष निकाल कर लिखते हैं कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रिय व्रत को कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है। बात करें भागवतम की, और ये भागवतम हमारे पास सुनने को, पढ़ने को, बोलने को सिर्फ और सिर्फ कृपा जी की कृपा से प्राप्त हो पाई। पूरे भारत में कहीं भी इस तरह भागवत की कथा नहीं की जाती किसी भी मंदिर में, और ना इस तरह से आगे कोई विस्तार से इसको बताने की भी व्यवस्था कहीं पर भी है। भागवत कथा घर घर में पहुंच रही तो ये शिल प्रभा जी की कृपा से। शिल प्रभा जी एक बड़ा सुंदर वाक्य है, यहाँ पर बात है गुरु और शिष्य के संबंध की, मैं उसी से चर्चा शुरू करूँगा कि शिल प्रभा जी भागवत कथा सुन रहे हैं और व्यास आसन पर बैठे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज। कथा चल रही है और दूसरी तरफ मंदिर में भगवान के पट बंद होने के लिए घंटी सुनाई पड़ी तो जितने भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे सभी उठ के भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन उनमें से एक शिष्य उनका वहां पर बैठा रहा, अभयचर। जब सभी शिष्य वापस दर्शन करके आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछे, जी आप सभी जानते हैं इस बात को कि आप अपने नेत्रों की कसरत करके आ गए, मैं जहां पर बैठा हूं आपका गुरु जहां पर बैठा है भागवत कथा कर रहा है और आप ये नेत्रों की कसरत करने के लिए कथा को छोड़ के चले गए, ये आपने सभी ने सुना हुआ। इसके बाद कुछ साल बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज इलाहाबाद में गौड़िया मठ के मंदिर में पहुंचे। उस समय अभयचंद को भी पता चला कि उनके गुरु महाराज आए हैं तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए गया है। और जब वो गुरु के आमने सामने हुए, अपने गुरु जी के आमने सामने हुए तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज क्या बोले उनके साथ जो खड़े थे कि मैं इसे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे अभयचरण की तरफ इशारा कर दूंगे, इसे मेरा प्रवचन सुनना बड़ा अच्छा लगता है और जब मैं प्रवचन करता हूं तो ये उठकर नहीं जाता, इसीलिए मैंने इसे अपने मन से इसे अपने शिष्य स्वीकार किया है। ये एक गुरु अपने शिष्य के प्रति सभी से बोलते हुए बता रहे हैं। और वो शिष्य कैसा था, भारत में नहीं पूरे संसार में आज भागवत कथा हो या भगवत गीता की कथा हो तो सारा श्रेय शिल प्रभुपाद जी को जाता है। और शिल कृपा जी इस सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को देते हैं। शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है अगर उसकी अपने गुरु के प्रति उसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और अविचल भक्ति है। ये एक मापदंड है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्ति में अग्रसर होना है, भक्ति में उन्नति करनी है तो आपकी अपने गुरु के प्रति आपके मन में अविचल भक्ति, श्रद्धा तथा विश्वास, ये नहीं है तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में संदेह है। शिल प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और गृहस्थ में रहते हुए अपने गुरु को प्रसन्न किया और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को हासिल किया। भक्ति किसे कहते हैं? शिल प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से सीखा और फिर अपने शिष्यों को आगे बताया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी कृपा से। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक अनुवाद में प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। एक गृहस्थ कैसे अपना आध्यात्मिक जीवन बनाता है? यहाँ पर बोला गया कि समस्त भगवद गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आठवें अध्याय का सातवां नंबर श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृंजुत च मय अर्पितो मनो बुद्धियो मामेश ऐश्वर्य असंशयम्। भक्त का लक्षण जो इस श्लोक में बताए गए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जीवन के अपने हर पल में माम अनुस्मर, माम इन मेरा अनुस्मर, अनुस्मरण का मतलब स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण, माम अनुस्मर अर्थात कॉन्टिन्यू प्रोसेस भगवान का स्मरण करने का। एक पल के लिए भी एक गृहस्थी के मन से भगवान का ध्यान नहीं हट जाए और उस स्मरण को करते हुए, निरंतर स्मरण करते हुए वो अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में असंशयम, निसंदेह वो फिर मेरे पास आएगा, मेरे तक पहुंच जाएगा। माम अनुस्मरण, ऐसा कोई पल नहीं हो आपके जीवन में कि भगवान की विस्मृति हो जाए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पल नहीं होता मन से जिसमें भगवान को याद कर सके। ऐसा कोई शास्त्र बोलते हैं कि ये जो श्लोक बोला गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि माम अनुस्मर, कंटिन्यू प्रोसेस स्मरण करने का, कि ऐसा कोई पल नहीं हो जिसमें तू मेरी विस्मृति कर दे, अर्थात अगर तू मेरे को भूल गया एक पल के लिए और फिर अगले पल तेरे को मैं याद आ गया तो तेरे को उस भूले हुए पल के लिए इस कदर अफसोस होना चाहिए तेरे मन में कि जैसे इस कदर तू शोक मनाए उस पल के लिए जिस पल में तुम्हें भूल गया था मेरे को, कि इस कदर शोक की जैसे तेरा अपना सगा पुत्र मर गया हो। क्योंकि जिस भूले हुए पल में तू मेरे को भूला था, जिस पल में, उस पल में अगर तेरा शरीर छूट जाता तो तेरी क्या गति होती, तेरी गति क्या होती। तू तो गया था अधोगति में। तो ऐसा जीवन का कोई पल नहीं हो जिसमें तू मेरे को भूल सके। प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया कि जीवन का ऐसा कोई पल नहीं हो जिसमें, कि नाम क्या रखा, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर पल तेरे जहन में कृष्णा रहे। क्या बोला जाए पर कि भक्त जो होता है वो संसारिक सारे कार्य करता है लेकिन कार्य करते करते भगवान को नहीं कभी बुला पाता। ऊपर से लगता है कि वो संसार के कामों में व्यस्त है लेकिन अंदर से उसका अंतर्मन भगवान के साथ जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं अर्पित हूं मन बुद्धि, हो मन और बुद्धि तुम मेरे को अर्पित कर दे, आठवें अध्याय में। जबकि इसके पहले छठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल चुके कि मना ही चंचला कृष्णा परमाते बलवज्र, नहीं कंट्रोल में कर सकता मैं, वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान ने बोल दिया अभ्यास कर, और यहाँ आकर भगवान बोलते तुम मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दे, मेरे को दे दे। और यही बात को भगवान श्री कृष्ण ने बारहवें अध्याय में भी दोहराया, अपना मन और बुद्धि मेरे में निवेश कर, मैं ये मनो अदत स्वा मयम च बुद्धि निवेश, अपना मन मेरे को दे दे, अपनी बुद्धि मेरे में निवेश कर। यही बात भगवान ने बोल ली। और 18वें अध्याय में बोल दिया मन मना मेरा चिंतन कर, अपने मन को मेरे चिंतन में लगा। इन्हीं सारी बातों को रखते हुए प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि ऐसा जीवन का कोई पल नहीं हो, आपकी गृहस्थी की सारी गतिविधियां इस प्रकार कंट्रोल्ड होनी चाहिए कि आपके जहन से कृष्णा नहीं निकल सके। श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में भी प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि एक बड़ा निम्न कोटि का वो उदाहरण है लेकिन उसका अर्थ बड़ा उच्च स्तर का, जो उन्होंने अपनी भूमिका में श्री प्रभुपाद ने लिखा कि एक स्त्री विवाहता होकर अपने घर आई तो वहाँ आकर उसका किसी और के साथ चक्कर हो गया। पति को शंका शक ना हो, पति को पता नहीं चल जाए तो अपने सारे घर के कार्य बड़ी बढ़िया तरीके से करते, अपने पति की सेवा भी बड़ी बढ़िया थी, उसकी सब जरूरतों का देखभाल करती है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए, पति की सेवा करते हुए, घर की देखभाल करते हुए, उसका मन कहाँ होता है, जिसके साथ उसका दूसरी घर चक्कर चल रहा है। अर्थात मन उसने उसको दिया हुआ है लेकिन अपना घर का सारा कार्य, अपने पति तक का कार्य सारा वो करती है। तो ये संभव है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो ये संभव है, लेकिन हमने कभी भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रभुपाद जी के तरीके से लेने का प्रयास नहीं किया। प्रभुपाद जी के एक बहुत मित्र जानने वाले, जब प्रभुपाद जी विदेश से पहली बार वापस आए तो उनका कलकत्ता में बड़ा अच्छा भव्य स्वागत हुआ, जगह जगह उनको घर में प्रीति भोज के लिए बुलाया जाने लगा। तो प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को अपने साथ लेके जाया करते थे, तो ऐसे ही वो एक प्रीति भोज के लिए किसी के घर गए, उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ भोजन कराया, प्रसाद खिलाया, सब कुछ। अतिथि सत्कार होने के बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे, तो जो घर का मालिक था प्रभुपाद जी के पास आया अपने सबसे बड़े बेटे को लेकर, पापा जी ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, इशारा किया, पापा जी ये मेरी सबसे बड़ी बहू है, इशारा किया, पापा जी मेरा सबसे बड़ा पोता है, फिर ये मेरा मंझला बेटा है, ये मेरी मंझली बहू है, एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को प्रभा जी से उसने मिलवाना शुरू किया। मेरा ये छोटा बेटा है, छोटी बहू है, ये मेरा मेरी बेटी है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, एक एक करके सबको मिलाया। और फिर मिलाने के बाद अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और प्रभा जी अपने शिष्यों के साथ बैठे, तो प्रभा जी अपने शिष्यों को क्या बोले, ये इसका मैथुन परिवार है। ये क्या है, इसका मैथुन परिवार है। एक गृहस्थी एक गृहवेदी, हम लोगों को मालूम थोड़ी था गृहस्थी क्या होता है, गृहवेदी क्या। हम तो अपने आप को गृहस्थी मानते हैं, प्रभा जी ने अंतर बताया कि गृहवेदी क्या होता है और गृहस्थी क्या होता है। अपने अपने अंतःकरण में झांक कर देखा जा सकता है कि हम गृहस्थी हैं या गृहवेदी हैं। प्रभा जी द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु धारण कर लिया, प्रभा जी को गुरु स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद आपका इस संसार से निकलना नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो कि हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार बैठे। प्रभा जी ने आपको सब प्रकार के रास्ते बताए, और जैसे कल कथा चल रही थी, बड़ा सुंदर कथा था, यहाँ पर भी इसी बात का वर्णन आगे कंटिन्यू चल रहा है कि कोई व्यक्ति अपने भक्ति में जीवन से गिर गया तो भगवान उसे संभाल लेते हैं, भक्ति करते हुए गिर गया। अब हमने ये देखना है क्या वास्तव में हमने प्रभा जी को ज्वाइन करने के बाद भक्ति किया है कि नहीं किया, शुरू भी किया है कि नहीं। गिरना तो बड़ी बात की बात है, गिरना तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो ये देखना कि भक्ति शुरू हुई भी है कि नहीं हुई है। हम कितना प्रभा जी के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति यहां पर माला लेके घूम रहा है, हरे कृष्णा भी करता है, लेकिन भगवान भगवद गीता में कुछ और ही बोल देते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम्पि सिद्धम्। लाखों हजारों चले माला गले में डाल के हरे कृष्णा करते हो, लेकिन भगवान बोलते कि मेरे तक तो कोई एक अध बिरला पहुंचेगा। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी ने शिला प्रभा से सवाल किया, प्रभा जी स्वामी जी इतने लोग इस कौन को ज्वाइन करते हैं, ये सारे के सारे भगवत धाम जाएंगे? तो प्रभा जी ने जवाब दिया, नहीं, भोगेश्वरे पर सकता नाम त्या परित चेत साम अवसाद का बुद्धि समाधो नाम विधीयते। प्रभा जी बोले कि भोग ऐश्वर्य की वृत्ति का जो व्यक्ति त्याग करके अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा वो जाएगा सिर्फ भगवान के धाम। हमने कितना त्याग किया है भोगेश में, मैं बहुत कम आता हूँ, महीने साल में 3 बार मैक्सिमम वृंदावन आता हूँ, तो मेरे को हर बार एक नया अनुभव देखने को मिलता है। मैं तो नया नया जुड़ा हूँ यहाँ से, हालांकि मेरे को 14 साल हो गए कृपा जी के इस मिशन में शामिल हुए, लेकिन कृपा जी के मिशन में जुड़ने से मेरे को सबसे पहले दिन मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा अनुभव हुआ कि कृपा जी आपके साथ हर पल आपके साथ बैठे हुए हैं। अगर कोई इस बात को मान के हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है तो कृपा जी विदेश से जब चलने लगे, उसमें उनकी एक शिष्या गोविंद देवी दासी, एक शायद जगत तारिणी देवी दासी बोला, पूछने लगी कृपा जी अब आप जा रहे तो हम कैसे आपके साथ, आपका संग कैसे महसूस कर पाएंगे कि आप हमारे साथ हो। तो कृपा जी ने उनको जवाब दिया कि जब आप 16 माला का जाप करोगे तो समझ लेना कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। शिल कृपा जी बोले, और मैंने जब ये मिशन ज्वाइन किया कृपा जी का, तो मैं मेरी जब दीक्षा हुई, सबसे पहले नाम दीक्षा हुई, तो उसके कुछ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी चंडीगढ़ में, तो जो रथ था भगवान जगन्नाथ जी का रथ था वो मेरे निवास से बैक साइड की मेरे घर के पीछे वाली सड़क से होकर निकलता था। तो मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज से मेरी दीक्षा हुई थी, तो मेरे मन में एक भाव आया कि क्या गुरु महाराज मेरे घर में आज आ सकते हैं। तो मैंने ये बात अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस कृष्ण कांदिया स्वरूप से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि गुरु महाराज मेरे घर आ जाएं? तो उस समय मेरे शिक्षा गुरु ने मेरे को बोला आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, बोले आपको सिर्फ कृपा जी के चरणों में प्रार्थना करो कि गुरु महाराज जी मेरे घर आ जाए। मैंने पूरे मनोयोग से श्रील कृपा जी के विग्रह के सामने जाके नतमस्तक होते हुए प्रार्थना किया, गुरु महाराज जी आज मेरे घर अगर आ जाए कृपा जी तो बड़ी आपकी मति कृपा होगी। शाम को रथ यात्रा मेरे घर के पीछे से निकल रही थी और मैं अपने घर में था, तो मैं रथ यात्रा देखने के लिए घर से थोड़े 10-20 कदम पे एक मोड़ था, मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया। उधर गुरु महाराज जी उस रथ यात्रा के साथ साथ चल रहे थे, तो उन्होंने अपने उनके साथ जो भक्त थे उनमें से किसी से पूछा कि यहाँ किसी भक्त का घर है, तो कुछ भक्तों ने बोला यहाँ पर अभी अभी विद्या पूरण प्रभु हैं, उन्होंने दीक्षा ली आपसे, उनका घर है बिल्कुल सामने है। तो गुरु महाराज बोले कि मेरे को लघु शंका के लिए उनके घर ले चले। क्या श्रील कृपा जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं? और गुरु महाराज जी मेरे घर में और मैं बाहर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर, आपके मन में अविचल भक्ति है कृपा जी के लिए, श्रद्धा है, विश्वास है, तो कृपा जी आपके साथ हैं। और इसमें कमी है तो समस्या है। यहां पर बोला गया नारद मुनि गुरु के चरण कमलों के प्रति प्रिय व्रत की श्रद्धा थी, विश्वास था, विचल भक्ति थी, तो उन्होंने सर्वोच्च अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लिया। प्रभा जी आपके साथ हर समय है। मैंने यहीं पर एक प्रवचन सुना था, मैं उनका नाम नहीं, मेरे को ध्यान, बड़ा सुंदर प्रवचन था। उन्होंने प्रवचन बोलते हुए कहा, किसी ने सवाल किया जहां पर बैठे हुए कि भक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो प्रवचन करने वाले महात्मा बोले कि साधु संग करने का प्रयास करो। तो उन्होंने पूछा कि साधु कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति साधु है कि नहीं है, तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि आपके बारे में डाउट हो सकता है कि आप साधु हो कि नहीं हो, मेरे बारे में संदेह हो सकता है कि मैं साधु हूं कि नहीं हूं, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि वो साधु है कि नहीं है। तो इसलिए क्या करो, प्रभुपाद जी की बुक्स निकालो, आपको प्रत्यक्ष एक साधु संग ऐसा मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन की कोई परिस्थितियां विपरीत, कोई सवाल है, कोई संदेह है, कोई शक है, प्रभुपाद जी की किसी भी बुक को उठाइए, पूरे मनोयोग के साथ पेज खोलिए, मतलब नहीं कि आपको इस पेज में आपकी समस्या का समाधान ना मिल पाए, लेकिन श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, फिर आपके पास कोई समस्या नहीं। शास्त्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने पिछली बार भी एक बात बोली थी जहां पर कि देवाहूति और कर्दम मुनि का संवाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। देवाहूति को शोक एक चैप्टर है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि इस जीवन से मुक्त होने के लिए भगवत प्रेम अपने अंदर जागृत करने के लिए आपके पास चार कृपा का होना बेहद आवश्यक है। पहली कृपा क्या है? भगवत कृपा। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तो भगवान ने अपनी कृपा आपके ऊपर कर दिया है। दूसरी कृपा शास्त्र कृपा, भगवद गीता भागवतम जैसा ग्रंथ भी आपके जीवन में आपको प्राप्त हो गया तो ये दूसरी कृपा भी आपको प्राप्त हो गई। तीसरी कृपा गुरु कृपा, प्रभुपाद जी जैसा संत भी आपके जीवन में आ गया। तीन कृपा आपके पास मिल गई, 75 पैसे आपका काम हो गया, 25 पैसे काम बकाया है। चौथी कृपा बोलते हैं आत्म कृपा, अपने ऊपर अपनी कृपा, ये ही नहीं मिल पाती अपने को। इसी कृपा से वंचित रहने की वजह से अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं कर पाते। अभी मन नहीं है, अभी कहीं जाना है, माला जाप करते तो हरे कृष्णा कृष्णा इधर उधर देखते हुए करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं तो नींद आती है। आत्म कृपा, अपने ऊपर अपनी कृपा, ये नहीं हो पाती। और सारी आपकी जो खेल है यहीं पे आके रुक जाती है। मन लगा के 16 माला का जाप करना, प्रभुपाद जी ने सिर्फ यही बोला आपको भागवत अध्ययन करना, साधु संग करना, प्रसाद खाना, लेकिन सबसे जब भी दीक्षा दी जाती है किसी को तो सबसे महत्वपूर्ण बात है 16 माला का जाप करना। वो ही नहीं हो पाता, शुरुआत नहीं हो। करते हैं, सभी करते हैं 16 माला, 32 माला भी करते हैं, लेकिन उनमें माला करने में आपका कितने में आपका मन लगता है, ये महत्वपूर्ण है। निपटाने वाली माला हो रही है, गुरु ने बोल दिया है गल पे अटोल बजाना है तो निपटा देते हैं, लेकिन उसमें मन कितनी माला में आपका लगा जाए, आपको सबको अपना अपना अंदर पता होता है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब तक जाप आपका क्वालिटी वाला नहीं होगा तब तक आपकी प्रगति आगे नहीं होगी। शिल प्रपाय से पूछा गया, जाप करके हटे, कीर्तन करके हटे, तो एक लड़की इंग्लिश की वोटी, स्वामी जी अब मैं जाप करती हूँ तो मेरे मस्तिष्क पे, माथे पे, आंख बंद कर तो माथे पे लाल प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है, बन बनाहट सी होनी शुरू हो जाती है, ये क्या है? तो प्रभा जी बोले आप जाप करते रहो, उसे क्या होगा? प्रभा जी बोले जाप से जाप उत्पन्न होगा, जाप से जाप उत्पन्न होगा। प्रभा जी बोले किसी से जब हम प्यार करते हैं तो उसका नाम पुकारने का बार बार मन करता है, और जैसे जैसे आप हरे कृष्णा का नाम पुकारते चली जाओगी, ये जाप करते चली जाओगी हरे कृष्णा महामंत्र का, तो जाप से जाप अंदर से इच्छा होगी मैं और करूं और करूं। वो वाली स्थिति जब आ जाए, कोई कह दे कि माला का जाप करना है तो हम तो ये बोलते यार मेरी तो 16 माला होगी, या आप कर लो यार मैं बाद में मिलता हूं, वो स्थिति बीमार वाली है। किसी ने जाप करने के लिए बोल दिया और आगे से ये जवाब दे दिया भाई मेरी तो 16 माला हो गई है, अभी हम बीमार हैं, 17वीं माला करने के लिए तैयार नहीं, इधर बाहर रह के उधर उधर जाके किसी के पास खड़े होकर बातें तो कर लेंगे लेकिन माला करने के लिए। जब तक अंतर मन से ये स्थिति नहीं खत्म होती आपकी, तो प्रभा जी बोलते अपने उस शिष्य उस लड़की से बोले तब तक जाप से जाप नहीं जब तक उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा तब तक कुछ प्राप्त। पर ये स्थिति अपने अंदर पैदा करनी तो वो क्वालिटी चैंटिंग से आएगी। एक बड़ी सुंदर बात प्रभा जी बोले कि हर व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ जो भी सोचता है कि यार मेरे को घर का काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, ये करना है, सब चीजें देखनी पड़ती, तो समय नहीं मिल पाता। लेकिन शास्त्र बोलते हैं, प्रभा जी बोलते हैं कि जैसे ही आप अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारते चले जाओगे आपका भौतिक जीवन अपने आप सुधरता चला जाएगा। आपको अपना भौतिक जीवन सुधारने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। घर कैसे चलेगा, घर का गुजारा कैसे होगा, ये प्रयास करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अपना आध्यात्मिक सुधारने के प्रयास में मनोयोग से आपने अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लिया, भौतिक जीवन आपका अपने आप सुधरता चला जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। और हम क्या करते कि भौतिक जीवन सुधार लें, फिर उसके बाद आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देते हैं। समय मिलेगा तो जी आएंगे, आज तो पूरा दिन बड़ा बिजी रहा, ये घातक स्थिति अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस दिन आपने सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने का प्रयास मात्र ही करना शुरू कर दिया ना, मनोयोग से, विश्वास के साथ, उसी दिन से ही आपके भौतिक जीवन आपका सुधरना शुरू हो गया। भगवान ने ऐसे नहीं बोल दिया योग से ममहामी है, तेरी जो आवश्यकता मैं पूरी करूंगा, जो तेरे पास है उसकी रक्षा में। अनन्य शिष्यंतो माम जे जना पर उपास, और ये बातें नहीं होती तो भगवत गीता गलत हो जाती, और भगवत गीता कभी गलत नहीं होती। और सारा ये दारोमदार आपकी अपने गुरु के प्रति की गई सेवा और श्रद्धा विश्वास के साथ साथ। हरे कृष्णा 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 हरे। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन है?